नमस्कार श्रोताओ, छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है महिलाओं के लिए संपत्ति व भूमि का अधिकार। हमारे देश में समानता के अधिकार के तहत महिलाओं के लिए संपत्ति व भूमि का अधिकार है। इसके तहत बेटी हो या बेटा हो, दोनों को संपत्ति में एक जैसा अधिकार है। आज हमारे साथ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ से शिवानी श्रीवास्तव ताई जुड़ी हुई है। शिवानी ताई, मोबाइल लाइन पर स्वागत है आपका।
धन्यवाद धन्यवाद मिर्जी।
महिलाओं के लिए संपत्ति व भूमि के अधिकार को किस तरीके से देखते हैं आप?
दरअसल बात कानून से शुरू करनी चाहिए कि जब कानून ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में जब संशोधन हुए 1956 के बनाए हुए कानून में, तो उसमें काफी कुछ जो है महिलाओं को राहत मिली उस समय आके। हालांकि उसमें तीन तरह के जो उत्तराधिकार उन्होंने बनाए थे, जिसमें एक हिंदू था, हिंदू अधिनियम था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था, दूसरा मुस्लिम्स के लिए, और तीसरा जो है वो जो गैर हिंदू भी नहीं है और मुस्लिम्स भी नहीं, जिसमें पारसी या इस तरह के लोग जो आते हैं वो उसके लिए था। तो इसमें सबसे ज्यादा जो राहत मिली वो महिलाओं को 2005 में संशोधन अधिनियम जो आया, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, उसको लेके थोड़ा सा महिलाओं में एक राहत का ये रहा कि पहले चीजें जो बिल्कुल ही नहीं, ना के बराबर थी, या कहना चाहिए कि जबरदस्ती उनसे ले ली जाती थी, उनके पास कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे, तो कानून में इस तरह की चीजों में संशोधन लाके इनको राहत तो कहीं ना कहीं मिली है। जी
जी, महिलाओं के लिए इस कानून के माध्यम से उनके
जी
जीवन यापन में और आने वाले जीवन में किस तरह परिवर्तन देखते हैं ऐसे कानून आने से?
देखिए, दो तरह की चीजें अब फिर यहाँ पे आती हैं कि यदि हम बेटी को संपत्ति में अधिकार की बात करते हैं तो उनके जीवन में निश्चित तौर पे एक सुरक्षा की तो कहीं ना कहीं एक स्थायित्व तो आता ही है कि हमारे पास एक जीवन यापन के लिए संपत्ति है, और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का भाव रहता है जो शुरू से ही महिलाओं में एक असुरक्षा पाई जाती है चीजों को लेके। अगर उनके पास संपत्ति का अधिकार आ गया है या उनके पास कुछ संपत्ति है, तो उससे एक तो वे आत्मनिर्भर महसूस करती हैं, दूसरा उनको ये भी लगता है कि किसी ना किसी तरह से जो एक सामाजिक दबाव होता है महिलाओं के ऊपर, तो वो कम महसूस करती है उस चीज से। मतलब उनको लगता है कि संपत्ति रहने से उनकी थोड़ी पूछपरछ भी ज्यादा होगी, सामान्य भाषा में अगर इसको बात करें तो ये कहीं ना कहीं उनको ये लगने लगता है कि मेरे पास अगर मेरा अर्न किया हुआ है तो भी ठीक है, लेकिन अगर मुझे संपत्ति मेरे पैतृक उससे मिले वो भी, या जो एंसेस्टर्स का जो है, मतलब पिता के द्वारा कमाया हुआ और एंसेस्टर जो पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति उसको मिले, तो उससे कहीं ना कहीं उसको राहत तो मिलती है, अपनी सुरक्षा की भावना वो महसूस करती है। जी
जो भी यह कानून बन रहे हैं महिलाओं के लिए हो या फिर बच्चों के लिए हो, तो इसमें ग्रामीण
जी
क्षेत्रों तक इसकी जागरूकता के लिए क्या प्रयास किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को ऐसे अधिकारों के बारे में, ऐसे कानून के बारे में जानकारी हो?
जी वैसे एक्चुअली अभी तक हम ये देख रहे हैं कि इस संपत्ति कानून में जो महिलाएं, अभी शहरों में भी ये पूरी तरह से अवेयरनेस नहीं है, आपको सही मायने में बताया जाए तो ग्रामीण महिलाएं तो थोड़ा दूर का विषय हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले सवाल में आपको बताया कि एक सामाजिक दबाव होता है लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, कि वो किसी ना किसी तरह से वो संपत्ति में ना तो अपना अधिकार मांगेगी, और यदि गलती से है भी उसका, मतलब कानूनी तौर पे है भी, तो वो भाई या जो भी लोग हैं पितृक पितृसत्तात्मक लोग जो जिनको कहना चाहिए, पुरुष जो हैं घर के, वो कहीं ना कहीं ये विश्वास रखे रहते हैं कि बेटी जो है वो इससे अधिकार नहीं मांगेगी, और महिलाएं भी इसमें अपना एक वो समझती हैं कि नहीं, हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं बेटों की संपत्ति होती है या इस तरह की चीजें। अब हम बात करेंगे जब शहरी महिलाएं ही इसके प्रति इतनी जागरूक नहीं है, तो गांव में जाके इसको कैसे हम जागरूकता पैदा कर सकते हैं। तो छोटे छोटे से जो है वो कैंप कह लीजिए, या कहना चाहिए कि उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए कुछ लोगों को वहां जाना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए, चाहे वो किसी रेडियो के मार्फत से हो, या फिर वन टू वन कन्वर्सेशन हो, उसके जरिए जो है उनके दिमाग में ये बैठाया जाए कि भाई आपका भी उतना ही अधिकार है जितना एक बेटे का अधिकार है या किसी पुरुष का अधिकार है।
कैसे देखते हैं, या कम्युनिटी कम्युनिटी हो या फिर समूह हो या समाज में हो, इस तरीके की जो आपने अभी हाल ही में कहा कि जो
जी
लोगों को समझ नहीं है या समाज के दबाव में आकर इस तरीके के जो ये आते हैं, तो क्या एक समाज की भी कोई जिम्मेदारी होती है और उसको किस तरीके से निभाया जाए?
देखिए मैं बताऊं आपको कि समाज की जिम्मेदारी जो है वो तो दूसरे नंबर पे आती है। पहले तो जो व्यक्ति खुद है, जो महिला है, उसको अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। वो जो लोग यदि समाज में इस चीज को अच्छी नजर से देखते हैं या उनको लगता है कि नहीं बेटी को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जो एक बेटे को है, तो वो एक अच्छी सोच के लोग, हम कह सकते हैं कि खुले हुए सोच के लोग हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो भी बेटियों को अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए, और किसी ना किसी तरह से ये नहीं समझना चाहिए कि हम मतलब डर के या किसी तरह से अपना सरेंडर कर दें किसी चीज को, बिल्कुल नहीं। उसको उन लोगों को इस चीज पे फर्म होना चाहिए कि महिला होना कोई गुनाह नहीं है, या हम जो है कहीं ना कहीं से किसी दबाव में नहीं है कि हमने अपना सारा जो भी हमारा अधिकार है वो किसी और को दे दिया। अधिकार क्यों किसी को दे दिया जाए, ये तो हमारा कहना चाहिए कि पूरी तरह से, वैसे तो इसको इस अधिकार को बेसिक कानून, बेसिक अधिकारों में रखा गया था, फंडामेंटल राइट्स में रखा गया था। बाद में भले उसको उसमें अमेंडमेंट करके या ये कहने कि लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार समय समय पर इसको बदल दिया।
कैसे
जी
देखते हैं किसी दुर्घटना में किसी बेटी की हो या बहन की हो, किसी
जी
पति का देहांत हो जाता है, विधवा हो जाती है, तो इस तरीके के
जी
अधिकार है उनको आने वाले जीवन में किस तरीके से उनको बेहतर करने में, आने वाला जीवन बेहतर संवारने में कितना सफल होगा?
देखिए जो अगर ऐसा कोई कंडीशन हो गई है कि पति की मृत्यु हो गई है, तो ससुराल पक्ष से अगर वहाँ कोई पुरुष है, ससुर है या वो, तो वो अपनी बहू को वो दे सकते हैं। मतलब पति का जो उनका अधिकार, उनके बेटे का जो अधिकार है जो उसकी पत्नी को मिलना चाहिए वो देते हैं, और होना ही चाहिए, वो है भी संपत्ति के अधिकारों में वो चीज है। लेकिन उसी दूसरे केस में यदि वो परित्यक्ता है या अब अलग है, सेपरेट है, लेकिन तो उस समय उनको सिर्फ भत्ता मिलता है उनका, जो उनका जीवन यापन गुजारने के लिए दिया जाता है, उसमें फिर संपत्ति का अधिकार खत्म हो जाता है। तो ये जो पति की मृत्यु के समय जो आप बात करें कि जो बेटी है या जो बहू है उस घर की, उसको ये मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसके आगे आने वाले समय में जो है वो बच्चे भी हैं या उसके ऊपर उनकी जिम्मेदारी भी है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है वो थोड़ी सी आनी चाहिए समाज के अंदर।
क्या देखते हैं जो ये संपत्ति और भूमि का अधिकार मिला है महिलाओं के लिए, इसमें या कुछ और चेंजेस आने चाहिए आपको लगता है अपनी कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए?
देखिए उसमें जो मुझे लगता है, एक तो ये कि कानून ने तो अपनी तरफ से पूरी तरह बता ही दिया है कि यदि कोई बिल नहीं है, देखिए बिल कब बनाए जाते हैं, जब आपको किसी को विशेष अधिकार देना है, ज्यादा देना है या कम देना है ना। बाकी कानून ने तो ये कहा है कि आपके पास यदि पूरी संपत्ति है और उसमें आपके चार बच्चे हैं, उसमें एक लड़की भी शामिल है, तो चारों को बराबरी से बटेगा वो। तो लेकिन अगर कोई बिल नहीं है या इस तरह की चीजें हैं, तो मेरा ऐसा कहना है कि बेटियों को अपने अधिकार नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि ठीक वैसे ही पढ़ाई लिखाई और इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो तो एक जो खर्चे हैं, कहीं ना कहीं बच्चियों के दिमाग में ये भी बिठाया जाता है कि हमने आपके ऊपर पढ़ाने लिखाने पे इतना खर्चा किया, हमने आपके साथ में ये किया, तो अब बेटों का अधिकार ये है या इस तरह की चीज, तो ये सोच जो है वो दिमाग से निकालनी पड़ेगी। भाई उन्होंने जितना किया है बेटों के लिए किया है, जितना बेटियों के लिए कर रहे हैं उतना बेटों के लिए भी किया है, फिर पूरे जीवन भर बेटों को तो आपके साथ ही रहना है या किसी तरह की चीजें हैं। यदि बेटी अविवाहित भी है तो भी आपको कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के लिए, अपनी चीजों के लिए बात रखनी चाहिए, और यदि सामान्य तरीके से नहीं मिलता है तो कानून की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है।
तो ये थी हमारे साथ शिवानी ताई, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर महिलाओं के लिए संपत्ति व भूमि के अधिकार विषय पर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की। शिवानीताई मोबाइल वाणी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद
मोबाइल सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।